Siddhevya Om Namah Siddhevya Om Shuddhatmane Namah Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Achayanam Namo Lohe Sovasahunam Antai Macharahiya Jai Jaramarananta Poradha Samsara Layatamaham Jena Chinna Jinam Vande. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। तृतीय पुस्तक जो तृतीय अर्थाधिकार स्थिति विभक्ति, उसमें हम पृष्ठ संख्या 38 पर आ गए, 38 पृष्ठ। कल हम विशेषार्थ देख रहे थे, अपनी बात किसकी चल रही है, जघन्य कालानुगम। एक जीव की अपेक्षा काल किसको कहते हैं, जैसे उत्कृष्ट स्थिति का लगातार उत्कृष्ट उत्कृष्ट रहे तो जघन्य काल कितना है, उत्कृष्ट कितना है। अब जघन्य में चल रही बात, जघन्य स्थिति लगातार कितने समय तक चलेगी उसको कहेंगे जघन्य कालानुगम। उसकी बात हमने पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि ओघ की अपेक्षा एक समय होता है और वो कहाँ होता है, क्षपक सूक्ष्म सांप्राय में। जघन्य स्थिति वहां पाई जाती है ओघ की अपेक्षा, और उसका एक समय प्राप्त होता है। और फिर अजघन्य, जो जघन्य नहीं है उसको अजघन्य कहा था। तो अजघन्य कब से है, तो अनादि से है। जब तक क्षपक सूक्ष्म सांप्राय का अंतिम समय प्राप्त नहीं होता है तब तक जितनी है सबको अजघन्य कहेंगे। ये ओघ की अपेक्षा बात हुई। मार्गणाओं में जहां जितनी जघन्य होती है, कब होती है उसकी अपेक्षा, उसको छोड़कर अन्य जो है उसको अजघन्य कहा था। मार्गणाओं में हम देख रहे थे कल, यहां 37 पृष्ठ पर लास्ट लाइन आदेश से थोड़ा फिर रिवीजन करते हैं ना, कल बहुत बारिश हुई ना, बह गया सब। तो आदेश से नरक गति में मोहनी की जघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट सत्वकाल एक समय है। ये जघन्य सत्वकाल नारकियों में कब प्राप्त होता है याद है, हाँ, असंगी में से आया हुआ। तो एक समय कैसे किया, क्योंकि उसके दूसरे समय में जघन्य है, तो अजघन्य, सॉरी, जघन्य तो एक समय के लिए ही है, अजघन्य की बात आगे है। जघन्य तो घटित होता है क्योंकि एक समय के लिए वो जघन्य है, और अजघन्य स्थिति का जघन्य सत्व काल एक समय है। असंगी में से आए हुए जीव के विग्रह के दूसरे विग्रह में, विग्रह गति के दूसरे विग्रह में जघन्य होता है और पहले विग्रह में अजघन्य है, इसलिए वो मिनिमम एक समय वहां प्राप्त हो सकता है। तो ये पहले नरक में ही घटित होगा, नीचे के नरकों में ये घटित नहीं होगा। इसलिए कहा है पहले नरक में मोहनी की जघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट सत्व काल एक समय है, और अजघन्य स्थिति का जघन्य सत्व काल एक समय है, एक समय के लिए वो जघन्य है। और उत्कृष्ट सत्व काल एक सागर है, क्योंकि पहले नरक में कोई अजघन्य स्थिति के साथ आया है तो एक सागर उसकी वहां की उत्कृष्ट आयु है, तो तब तक उसके अजघन्य स्थिति का उत्कृष्ट काल कहलाएगा। और दूसरे नरक से लेकर छठे नरक तक प्रत्येक नरक में जघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट सत्व काल एक समय है। वो कब प्राप्त होता है याद है, अंतिम समय में। मैक्सिमम आयु लेकर आया है और आयु के अंतिम समय में उसके जघन्य स्थिति प्राप्त होती है अपने अपने नरक की। और अजघन्य स्थिति का जघन्य सत्वकाल उस नरक की जो जघन्य आयु है उतनी होगी अजघन्य। और उत्कृष्ट सत्वकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण हो गए। सातवें नरक में हमने देखा था जघन्य स्थिति का जघन्य सत्वकाल एक समय, अजघन्य स्थिति का जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थिति लिए। हाँ हाँ, कम कैसे करेंगे हम, लगातार अजघन्य 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 रहे, जघन्य तो नहीं है उस जीव के, अजघन्य के साथ ही उत्पन्न हुआ है और वो लास्ट समय तक उसकी जघन्य नहीं होगी जो उस नरक के योग्य है। हाँ, सम्यक तो प्राप्त करेगा, स्थिति कांडक आदि हो गए, उसके पश्चात एक एक समय निकलते रहेगा। तो जघन्य स्थिति वाले के ज्यादा निकलेंगे के उत्कृष्ट स्थिति वाले के अधिक निकलेंगे। उत्कृष्ट वाले के अधिक निकलेंगे। तो जघन्य स्थिति उत्कृष्ट आयु वाले के होगी कि जघन्य आयु वाले की होगी? उत्कृष्ट आयु वाले की होती है, क्योंकि उत्कृष्ट आयु है उतने उसके निषेक गल गए हैं। इसने भी सम्यक तो प्राप्त किया, उसने भी किया, पर हाँ जघन्य स्थिति, ये अजघन्य की बात चल रही है ना। उतनी जघन्य नहीं होगी, उतनी जघन्य नहीं होगी, क्योंकि जघन्य कब होती है, एक तो सम्यक तो प्राप्त किया और फिर अनंतानुबंध के विसंयोजना की अंत कोड़ाकोड़ी हो गई, फिर भी अंत कोड़ाकोड़ी में से भी एक एक निषेक गलते गलते जिसकी उत्कृष्ट आयु है उसके अधिक निषेक गलेंगे। जितने सागर की आयु है उतने समय के निषेक गल गए उसके, और जो जघन्य आयु वाला है उसके इतने निषेक नहीं गले हैं। तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो जघन्य किसकी कहलाएगी? हाँ, उत्कृष्ट आयु। उस नरक में पॉसिबल जघन्य कहाँ है? तो वो अजघन्य वाले को या जघन्य आयु वाले को नहीं हो सकता। तो अजघन्य के साथ जघन्य आयु वाला जो वहां जन्मा है उसके जघन्य अजघन्य स्थिति का जघन्य काल, जघन्य अजघन्य आता है ना। लक्ष्मी बेन, कंफ्यूजन है कुछ आपको? पहले वाले की शंका है, 22 पेज निकालो भाई। 22 में, 22 में कौन सी बात? अच्छा, सातवीं पृथ्वी की बात पढ़ रहे हैं आप, 21 पृष्ठ से पढ़ेंगे। देखो, सातवीं पृथ्वी में मोहिनी की जघन्य स्थिति किसके होती है? अभी जो हम बात कर रहे थे तो दूसरी से लेकर छठी तक, उसको पहले समझो, जो हम चर्चा कर रहे थे उसके ऊपर क्या पैराग्राफ, 21 का नीचे से दूसरा पैराग्राफ, विशेषार्थ का दूसरा पैराग्राफ। देखो, दूसरी पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी तक नारकियों में मोहिनी की जघन्य स्थिति किसके होती है? ये तो स्वामित्व बता रहे हैं ना। जो कोई एक जीव दूसरी पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी तक अपनी अपनी पृथ्वी के अनुसार उत्कृष्ट आयु को लेकर उत्पन्न होता है, जिसने उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त काल के बाद प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त किया और अनंतर अंतर्मूर्त काल के द्वारा अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना की, दोनों ही बार उसने स्थिति कांडक घात आदि किए तो स्थिति घट गई बहुत उसकी। अब जितना उर्वरित उसकी आयु है तब एक एक निषेक गलता गया। उस जीव के नरक से निकलने के अंतिम समय में, यानी उसका मरण का समय, मरण का समय को या जीवन का अंतिम समय को मोहिनी की जघन्य स्थिति होती है। अब नीचे सातवीं पृथ्वी की बात करेंगे। सातवीं पृथ्वी में मोहिनी की जघन्य स्थिति किसकी होती है? अभी हम दूसरे से छठी तक तो एक समय के लिए ही जघन्य स्थिति का काल घटित होता है, एक ही समय के लिए। सातवीं पृथ्वी में क्या होता है? जो उत्कृष्ट आयु को लेकर, 33 सागर की आयु से आयु को लेकर सातवें नरक में उत्पन्न हुआ तथा अंतर्मूर्त काल के पश्चात जिसने प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त किया, पुनः अनंतानुबंधी चतुष्क की विषय योजना करके वहां रहा, इतनी बात तो अन्य नरकों के समान है। अब यह अंत तक सम्यक दृष्टि नहीं रह सकता है। हाँ, तो क्या कहते हैं? जब जीवन में अंतर्मूर्त काल शेष रह जाए तब मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, तो मिथ्यात्व प्राप्त होते ही उसने ज्यादा बंध नहीं किया है। जहां तक शक्य हो वहां तक सत्ता में स्थित मोहिनी कर्म की स्थिति से कम स्थिति वाले कर्म का बंध करके, सत्ता में अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति थी, जितनी है उससे भी कम बंध हुआ। मिथ्यात्व में आया उसका अर्थ नहीं कि उसको एकदम 70 कोड़ा कोड़ी होने लगे, मिथ्यात्व में रहते हुए भी उसका कम बंध हो रहा है, जितनी स्थिति है उससे कम, अंत कोड़ा कोड़ी ही कहेंगे उसको भी, फिर भी वो जितना सत्ता में है उससे कम बांध रहा है, जितना शक्य है तब तक, यानी जो कोई अंतर्मूर्त काल तक, उसका उतना कम बंध हो रहा। तदनंतर काल में जो सत्ता में स्थित मोहिनी कर्म की स्थिति के समान स्थिति वाले कर्म का बंध करेगा, जितनी है उतनी करेगा, पहले तो कम किया तो भी हम उसकी कितनी स्थिति कितनी कहेंगे, उतनी है जघन्य, उसके योग्य जघन्य है। अब जितना सत्ता में उतना ही करने लगा, यानी वो उतना ही रहेगा। पहले तो एक एक निषेक भी गलता था और बंध भी कम होता था, तो वहां घटती गई थी, अब यहां उतना ही बंध करने लगा तो उतनी ही स्थिति रहेगी उसके, उसके मोहिनी का जघन्य स्थिति सत्व होता है। अब ये बात यहां पढ़ेंगे, ऐसे कितने काल तक है? अन्य नरकों में एक समय घटित किया, सातवें नरक में कितने समय तक जघन्य है? अंतर्मूर्त, यहां देखो, अभी अड़तीस पृष्ठ पर ऊपर से सातवीं लाइन मूल ग्रंथ की बात है, विशेषार्थ की नहीं। सातवें नरक में मोहिनी की जघन्य स्थिति का जघन्य सत्व काल एक समय और उत्कृष्ट सत्व काल अंतर्मूर्त है, यानी वो जब मिथ्यात्व में आने के पहले उसने जघन्य तो की थी, उसके बाद मिथ्यात्व आने पर भी, मिथ्यात्व में आने पर बंध अंतर्मूर्त काल तक उसका कम होने लगा, तो वहां भी उसकी जघन्य स्थिति चल रही थी, या वहां भी एक एक समय उसका स्थिति में से घट ही रहा था, बंध उतना ही है तो फिर, और फिर लास्ट में जब अवस्थित उतना बंध होने लगा तो उस अंतर्मूर्त में उसका जघन्य रहा, लगातार उतना 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 रहा, अंतर्मूर्त लेना। लगातार कितने हैं उसकी बात है, लगातार कितने काल तक तो अंतर्मूर्त, इसके लिए अभी हम वो पृष्ठ संख्या हमने जो 21-22 देखी थी, हाँ, उतना ही स्थितिबंध होता है, इसका अर्थ उतने ही लगातार स्थिति बनी रही उसका, क्योंकि यदि हम कम बंद करेंगे तो स्थिति जितनी उतनी घटती चली जाएगी, अधिक बंद करेंगे तो अधिक होगा, स्थिति अधिक कहलाएगी, जितनी स्थिति है उतना ही बंद है, तो हम लगातार उतनी स्थिति चालू रही उसके अंतर्मूर्त तक, वो जघन्य के उत्कृष्ट है जो कुछ है। अब हम यहां 38 पृष्ठ पर विशेषार्थ पढ़ेंगे शुरू से, कल हमने थोड़ा पढ़ा था। जो असंगी पंचेंद्रिय जीव हजार सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बंध में से पल्लोपम के संख्यातवे भाग प्रमाण कम जघन्य स्थिति सत्कर्म को प्राप्त करके, यानी सत्ता में उससे कम हो गया, उसका संख्यात्व भाग कम सत्ता में से, पुनः जघन्य स्थिति सत्व होने के समय ही जघन्य स्थिति सत्व के समान स्थिति को बांध कर उतनी जितने सत्ता में उतने ही बांधा, दो समय विग्रह करके, तो दूसरे समय में जब वो स्थित है, वो नारकी में आया है, नरक गति में उत्पन्न होता है, और विग्रह में असंगी पंचेंद्रिय के जघन्य स्थिति सत्व से हीन स्थिति का बंध करता है। क्या कहते हैं? पहले उतना समान बंध कर रहा था, असंगी में था तब असंगी जैसा बंध कर रहा था, अब विग्रह गति में जब उत्पन्न हुआ है, यानी पहले उसने जब असंगी था तब जघन्य स्थिति की, और जितना जघन्य स्थिति है उतना ही बंध किया, विग्रह में नहीं गया, अभी तो असंगी ही है, असंगी में जघन्य स्थिति कर दी और अपनी स्थिति समान बंध किया, फिर मरा, अब विग्रह में आया, यानी वो नरक गति उसकी शुरू हुई, अब जितनी स्थिति है उससे कम बंध किया पहले उसी समय में, तो एक निशेक उसका गल भी गया, अब दूसरे समय में भी कम बंध किया, तो ये पहले समय में एक निशेक गल गया, यानी उसकी और स्थिति घट गई थोड़ी, एक समय से तो घट गई ना, जब दूसरे समय में आया तब उसके जघन्य स्थिति सत्व पाया जाएगा, क्योंकि बंध भी कम कर रहा है, अब वर्तमान वो निशेक फिर गलेगा भी, इसलिए वहां एक समय घटित होता है। इसलिए दो विग्रह वाला लिया वहां पर। दूसरे विग्रह के समय मोनी की जघन्य स्थिति प्राप्त होती है। ये पांच लाइन होंगे। अतः नरक में जघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। विग्रह गति में उसकी नरक गति है। देखो, पहले असंगी तो मरण हुआ उसका, मरण के बाद जो विग्रह गति में भी होगा तो जीव कौन सा कहलाएगा? अभी नारकी कहलाएगा, अभी नरक देह नहीं धारण किया है, नरक में गया नहीं है, विग्रह में है वो, ट्रांजिट में है, फिर भी उसकी नरकायु नरक गति सब शुरू हो गए उसके, वो नारकी जीव कहलाएगा। सत्कर्म ये सत्ता की सत्ता का कर्म, उसको सत्कर्म कहते हैं। तो नरक में जघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहाँ है? वो विग्रह गति का दूसरा समय। तथा ऐसे नारकी के पहले समय में अजघन्य स्थिति रहती है। ऐसा नारकी ने जो द्वितीय समय में जघन्य स्थिति करता है, पहले समय में वो असंगी जैसा है उसका सत्व है, उसको अजघन्य कहेंगे। नारकी रहते हुए अजघन्य स्थिति है, वो कितने समय के लिए रही? एक समय, क्योंकि दूसरे समय में जघन्य हो गई, तो ये विग्रह गति का पहला समय है। ये हमारे ख्याल में नहीं आ रही थी ना बात? तथा नरक में अजघन्य स्थिति का उत्कृष्ट काल, अभी अजघन्य का जघन्य काल वो पहले समय में घटित होता है, असंगी में से आया है और दूसरे समय में जिसने जघन्य की है, ऐसे जीव के पहले विग्रह में जब था तब एक समय घटित होता है, अजघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय। अब कहते हैं नरक में अजघन्य स्थिति का उत्कृष्ट काल कितना होगा? तो नरक की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण, वो अजघन्य स्थिति के साथ ही आया है, वो असंगी में से आया वगैरह वो नहीं लेना यहाँ पर, अजघन्य स्थिति के साथ आया है और पूरी लाइफ टाइम तक अजघन्य रहा, ऐसा जीव लेना। सामान्य नारकियों के समान पहले नरक में भी मोह की जघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय घटित कर लेना चाहिए। ये तो पहले नरक में ही घटित होगा, क्योंकि असंगी वहीं पर उत्पन्न होते हैं। पहले नरक की उत्कृष्ट स्थिति एक सागर है, अतः यहाँ अजगण्य स्थिति का उत्कृष्ट काल एक सागर कहा पहले नरक के लिए। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, परसों, आज तो एक तारीख हो गई ना, कल हुआ ही नहीं। दूसरे नरक से लेकर छठे नरक तक के नारकियों के, अभी सातवें की बात अलग से करेंगे, मुह की जगन्य स्थिति का प्राप्त होना भव के अंतिम समय में ही संभव है, ये ऊपर बताया था, उसी का विशेषार्थ चल रहा है। इनके जगन्य स्थिति का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा, क्योंकि वो अंतिम समय में प्राप्त होता है। किंतु यह जगन्य स्थिति अपने अपने नरक की उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव को ही प्राप्त हो सकती है, सो भी सबके नहीं, सबको होगी ही, ये बात नहीं है। किसको होगी? जो एक अंतर्मुहूर्त में सम्यक प्राप्त करेगा, फिर वो तो विसंयोजन करेगा वगैरह वगैरह। अतः अजगन्य स्थिति का जघन्य काल अपने अपने नरक की जघन्य स्थिति प्रमाण और उत्कृष्ट काल अपने अपने नरक की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहा, यानी वो सबकी वो जघन्य होगी ऐसा नहीं। तो जिसकी जघन्य नहीं होगी उसके लिए अजगन्य स्थिति का उत्कृष्ट काल पूरी उसकी उत्कृष्ट जो आयु है उतना होगा, जिस नरक में है वहां की उत्कृष्ट आयु। अब सातवें नरक की बात कर रहे हैं। सातवें नरक में उत्कृष्ट आयु वाला जो नारकी पर्याप्ति पूर्ण करके अंतर्मूर्त काल के द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त होकर दूसरे अंतर्मूर्त के द्वारा अनंतानुबंधी स्थिति का सत्कर्म की स्थिति, सत्कर्म यानी सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति, स्थिति सत्कर्म की विसंयोजना कर जीवन भर सम्यक्त्व के साथ रहा और अंतर्मूर्त आयु शेष रहने पर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। पुनः मिथ्यात्व में जितने काल तक शक्य हो उतने काल तक स्थिति सत्कर्म से हीन बंध करके, सत्ता में पड़े हुए कर्मों की जो स्थिति है उससे हीन बंद किया, जितने तक शक्य हो उतने तक, क्योंकि लगातार तो वो पॉसिबल नहीं है, बाद में तो अधिक होगा। अगले समय में सत्व स्थिति से अधिक स्थिति बांध बंद करेगा, सत्व स्थिति से अधिक स्थिति बंद करेगा। उस जीव के जघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। क्या किया उसने? पहले घटाया था, लास्ट समय में मिथ्यात्व में आया, फिर कम बंद किया, कम बंद किया तो उसके निशे के एक गलेगा और जाके जब वो अधिक बंद करेगा तो स्थिति ज्यादा हो गई, तो जगन्य काल तब एक समय के लिए प्राप्त हुआ। समान बंद वाले की बात तो बाद में करेंगे, वो जगन्य स्थिति के उत्कृष्ट काल में घटाएंगे। समान बंद लगातार होता रहे तो स्थिति भी लगातार उतनी रहेगी। यहाँ जगन्य स्थिति सत्व एक समय किसके होता है? पहले मिथ्यात्व में आने पर उसने कम बंद किया, जितना सत्ता में उससे कम किया, तो क्या हुआ? एक एक निषेक तो गलता रह गया और बंद कम किया है, ऐसे होते होते जहां तक पॉसिबल है कम बंद वहां तक किया, उसके बाद क्या किया? सत्ता में उससे अधिक बंद किया, तो अधिक करने के पहले समय वाला जो है वो उसकी जघन्य स्थिति, उसका समय एक है। अभी जो लगातार अंतर्मूर्त तक उतना ही करता रहे उसकी बात अब कहेंगे, और जो सत्ता में स्थित स्थिति के समान स्थिति वाले कर्म का बंध करता रहता है ने अंतर्मूर्त तक उतना करेगा, उसके जघन्य स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होता है। जिसने अधिक किया उसका जघन्य काल एक समय के लिए हुआ, और फिर पहले कम करता था फिर उतना ही करने लगा, तो जघन्य तो हो गई पर अंतर्मूर्त तक उतना उतना बंद होने से स्थिति भी उतनी उतनी रही, क्योंकि भले एक निशे गलेगा फिर भी बंद तो उतने का हो रहा है, तो स्थिति उतनी की उतनी रहेगी। ये कब तक हो सकता है? अंतर्मूर्त तक। तो जघन्य स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहलाएगा, ये बात ख्याल आ रही? हाँ। तथा जघन्य स्थिति के बाद जो अंतर्मूर्त काल शेष रह जाता है वह अजगण्य स्थिति का जगन्य काल है, क्या कहते हैं ये विशेषार्थ में और उन्होंने घटित किया। तो जगन्य करके तात्काल मरता नहीं है, पहले सम्यक्त में से मिथ्यात्व में आया, कुछ काल तक तो स्थिति से भी कम बंद किया, फिर कुछ काल तक उतना ही के उतना बंद किया, तो वो जगन्य स्थिति का अंतर्मूर्त घटित हुआ। उसके बाद जगन्य से ज्यादा बंद करने लगा, अभी मरा नहीं, वो सातवें नरक में है। तो बाद का जो अंतर्मूर्त है अजगण्य स्थिति का, वो अजगण्य स्थिति का जगन्य काल घटित होता है। एक अंतर्मूर्त पहले नरक में अजगण्य का एक समय घटित किया था विग्रह के पहले समय में, और सातवें नरक में अजगण्य का जगन्य काल अंतर्मूर्त घटित किया वो आयु के अंत में। तो सातवें नरक में जो उत्कृष्ट स्थिति है उसमें कैसे समझ में आया जयबेन, फिर दोबारा कौन सी बात? ये वो पहले नरक में था, क्योंकि पहले नरक में ही असंगी उत्पन्न होते हैं, तो अजगण्य स्थिति दूसरे समय में जगन्य थी, पहले समय में अजगण्य थी, इसलिए अजगण्य का जगन्य काल एक समय पहले नरक में घटित किया था। अन्य सभी नरकों में अजगण्य का जगन्य काल कितना है? अपनी अपनी जगन्य आयु प्रमाण है, दूसरे से लेकर छठे तक। सातवें में अजगण्य स्थिति का जगन्य काल कितना है? अंतर्मूर्त। वो कैसे लिया? तो उत्कृष्ट आयु के साथ जन्मा है, पहले अंतर्मूर्त के बाद उसने प्रथमोपशम सब में प्राप्त किया, फिर विषय योजना की, पूरे लाइफ टाइम तक सम्यक्त्व सहित रहा, फिर एक अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व में आया, वो थोड़ा बड़ा अंतर्मूर्त लेना। मिथ्यात्व में आने पर उसने स्थिति जितनी जगन्य की थी उससे भी कम स्थिति वाला बंद किया, तो उसका एक एक निषेक गलता गया। उसके बाद एक अंतर्मूर्त तक समान स्थिति वाला बंद किया, तो ये जगन्य स्थिति का अंतर्मूर्त हुआ, जगन्य स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त हुआ। उसके पश्चात उसने अधिक बंद किया, अधिक बंद किया तो अजगण्य हुआ, कितने काल तक रहा? अंतर्मूर्त तक। तो सातवें में अजगण्य स्थिति का जगन्य काल एक अंतर्मूर्त घटित हुआ। पहले नरक में जगन्य स्थिति का जगन्य काल एक समय घटित हुआ था, बीच वाले नरकों में जगन्य स्थिति का जगन्य काल अपनी अपनी जगन्य आयु प्रमाण हुआ था, और सातवें नरक में जगन्य स्थिति का जगन्य काल एक अंतर्मूर्त। चलो उनतालीस पृष्ठ पर 68 नंबर का पॉइंट, तिर्यंच गति में मोहनीय की जघन्य स्थिति का जघन्य सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट सत्वकाल अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट सत्वकाल है ना, जघन्य स्थिति सतत रहे कितने काल तक? तो अंतर्मूर्त काल तक। तथा अजगण्य, ये विशेषार्थ में लेंगे दोबारा, तथा अजगण्य स्थिति का जघन्य सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट सत्वकाल असंख्यात लोक प्रमाण है। असंख्यात लोक प्रमाण वो तिर्यंचों में रहने का उत्कृष्ट काल है। इसी प्रकार मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, अभव्य, मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों के कहना चाहिए, इतनी विशेषता है कि असंगियों को छोड़कर शेष मत्यज्ञानी आदि जीवों के अजगण्य स्थिति का जगन्य सत्वकाल अंतर्मूर्त है। अब इसको हम देखेंगे तो ये स्पष्ट होगा, क्योंकि सब कन्फ्यूजन है ना। अभी पहले पहले क्या पढ़ा था? तिर्यंचों में जगन्य स्थिति का जगन्य सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। अब उसको पढ़ेंगे। तिर्यंचों में मोहनी की जगन्य स्थिति एकेंद्रियों के प्राप्त होती है। हमें तिर्यंच कहने से एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब तिर्यंच लेना है, अकेले पंचेंद्रियों में जगन्य स्थिति कहेंगे तो कहाँ होती है? शपक सूक्ष्म संप्रदाय, अकेले पंचेंद्रिय कहेंगे तो यहाँ पंचेंद्रिय, यहाँ तिर्यंच कहना है, तो ये केंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय सभी तिर्यंच आ गए, तो उनमें जगन्य स्थिति किसके होती है? तो एकेंद्रियों की। एक तो उनके बंद कम होता है, आप कहेंगे पंचेंद्रियों में से अधिक बंद करके आया हुआ भी पाया जाता है, यहाँ हमने तो देव में से भी आया हुआ देखा था। हाँ, तो स्थिति कांडक घात होते, जितना काल एकेंद्रियों में बीतेगा उतने उसके स्थिति कांडक होते होते उसको हत समुत्पत्तिक कहते हैं। जगन्य में जगन्य स्थिति हो जाती है, कितनी होती है? सागर में भी वो पल्ले का असंख्यात भाग कम। तो कहते हैं तिर्यंचों में मोहनी की जगन्य स्थिति एकेंद्रियों के प्राप्त होती है, वो स्वामित्व में हमने देखा था। वह कम से कम एक समय तक, यानी ये जगन्य कब कितने काल तक रहेगा? एक समय तक हो सकती है, दूसरे समय में अधिक स्थिति बंद किया तो बढ़ेगी, और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त काल तक रहती है। कोई भी स्थिति बंद लगातार उतना ही होता रहे तो अंतर्मूर्त तक हो सकता है, कम से कम एक समय, क्योंकि प्रत्येक स्थिति का जगन्य बंध काल एक समय यहाँ लिखा ही है, यानी उतनी स्थिति का बंध काल। स्थिति का बंध काल यानी लगातार उतनी ही स्थिति बंधे तो कितने समय तक होगी? हो सकता है कि एक समय उतनी बंद कर और बढ़ेगी या कम होगी, या लगातार अंतर्मूर्त तक उतनी ही बंधेगी, उसको कहते हैं उत्कृष्ट बंध काल। अतः हाँ, उसके बाद बदलेगी ही बदलेगी, यानी वो जगह नहीं, वो ज्यादा होगी कम होगी डिपेंड्स। हाँ, कोई भी अंतर्मूर्त से अधिक उतना ही का उतना बंद नहीं होता। अतः इनके मोहनी की जगन्य स्थिति का जगन्य काल एक समय, इन्हें एक समय के लिए जगन्य, उसकी बंदी बाद में ज्यादा हुआ तो हम कहेंगे एक समय के लिए जगन्य हुए, और लगातार अंतर्मूर्त तक उतनी की उतनी बंदी और स्थिति तो उसने घटाई ही थी तो कहेंगे अंतर्मूर्त तक उसकी जघन्य स्थिति हुई, इसलिए उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त का। इतनी बात समझ में है ना? अब आगे, तथा जो तिर्यंच जघन्य स्थिति के बाद एक समय तक अजघन्य स्थिति के साथ रहा और मरकर दूसरे समय में अन्य गति को प्राप्त हुआ, क्योंकि हम तिर्यंच गति में मोह की बात कर रहे हैं। उसने एकेंद्रिय में जगन्य की, जगन्य के बाद अजगन्य हुआ, एक समय के लिए अजगन्य रहा और अन्य गति को प्राप्त हुआ, तो कौन से गति को जाएगा? हाँ, नरक में। हाँ, मनुष्य में ही आएगा, क्यों? एकेंद्रियों में उसने जघन्य की थी। एकेंद्रिय जो ना नरक में जन्मता है ना स्वर्गों में जन्मता है, फिर तिर्यंच में जन्मेगा, परंतु हम वो उसकी गति वही रहेगी, हमको गति बदलना है तो मनुष्य में वो भले लब्धियां पर्याप्त हो या पर्याप्त हो, मनुष्य में जाएगा। अन्य गति को प्राप्त हुआ, उसके अजघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। ये समझ में आया? पहले एकेंद्रियों में जाकर उसने जघन्य की थी, जघन्य के बाद एक समय के लिए अजघन्य रहा और फिर मरकर अन्य गति को प्राप्त हुआ, तो अजघन्य की जघन्य स्थिति उसका काल एक समय हुआ। तथा तिर्यंच पर्याय में मोहनीय की अजघन्य स्थिति के साथ रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। असंख्यात लोक प्रमाण तो सूक्ष्म की बात है, बादर के लिए तो अंगुल का असंख्यात भाग कहते हैं। बादर में अंगुल का असंख्यात भाग होता है, एकेंद्रिय में रहने का काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है, फिर भी अजगन्य का काल तो उसका असंख्यात लोक प्रमाण ही होगा। बीच में जगन्य हो जाएगा, इतना उत्कृष्ट काल एकेंद्रियों में रहेगा तो उसको जगन्य हुए बिना रहेगा नहीं। देखो, हम स्थिति की बात देखते हैं, स्थिति हमने पहले देखी थी ना, पेज नंबर निकालो, एक इंद्रियों की स्थिति हमने देखी थी, 27 ऐसा कुछ था ना, 31 पृष्ठ पर। विशेषार्थ में थर्टी वन पेज पर विशेषार्थ में आती है बात। वो काय स्थिति है अभी, एक इंद्रिय में निकालना, एक इंद्रिय के बाद उसके पहले पर 29 पृष्ठ पर है, निकाले देखो विशेषार्थ में चौथी लाइन, एक इंद्रियों की काय स्थिति असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, ये ठीक है ना। फिर उसके नीचे की दूसरी लाइन, बादर एक इंद्रिय और बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीवों की काय स्थिति क्रमशः अंगुल के असंख्यात विभाग, ये बादर एक इंद्रियों की स्थिति अंगुल का असंख्यात विभाग, और बादर एक इंद्रिय पर्याप्तों की स्थिति नहीं नहीं संख्यात हजार वर्ष, वो अंगुल के असंख्यात विभाग के लिए असंख्यात असंख्यात लिखा है। बादर एक इंद्रिय लेंगे तो अंगुल का असंख्यात विभाग, और एक बादर एक इंद्रिय में पर्याप्त लेंगे तो संख्यात हजार वर्ष। सूक्ष्म एक इंद्रियों में पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो अंतर्मूर्त, परंतु दोनों में मिलकर रहने का काल असंख्यात लोक प्रमाण, ये आई होगी बात आगे सूक्ष्म जीवन की बात, नीचे नीचे हाँ। देखो सूक्ष्म जीवों में, सूक्ष्म ने जब जनरल बात करते हैं पर्याप्त पर्याप्त, उत्कृष्ट सत्व काल असंख्यात लोक प्रमाण है, और आपको जो याद है किसी कायिक में रहने का काल तो उत्कृष्ट कर्म स्थिति प्रमाण ऐसा कुछ था ना, बादर पृथ्वी कायिक या बादर जल कायिक में उत्कृष्ट कर्म स्थिति प्रमाण था, वो 31 पृष्ठ पर बात आई थी विशेषार्थ में। बढ़ेंगे आगे, ऐसा क्यों कहा, ये आपको बासुपो बासुओ याद है, बादर फिर सूक्ष्म, बादर ऊपर बादर पर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त और बादर अपर्याप्त, ये क्या है, तो स्थिति कितनी कौन बांधता है, तो एक इंद्रियों में ये स्थिति बंद करने का है, एक इंद्रियों के योग्य मैक्सिमम स्थिति बंद बादर पर्याप्त जीव करेंगे हा? एक सागर बापो यानी बादर पर्याप्त, उससे कम स्थिति बंद करेंगे सूक्ष्म पर्याप्त जीव, उससे कम जघन्य स्थिति बंद करेंगे सूक्ष्म अपर्याप्त जीव, और सबसे जघन्य कौन करेंगे, बादर अपर्याप्त जीव, तो जघन्य स्थिति किसके होगी, बादर अपर्याप्तों की होगी, नहीं बादरों की जघन्य हो सकती है, सूक्ष्मों की अगर होगी अजघन्य ही होगी, बादर में चला जाएगा हाँ, क्योंकि हम जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कहते हैं केंद्रियों का काल तो सब में मिलकर कहते हैं, तो बादरों में चला जाएगा अपर्याप्तों में, तो उसमें गए बिना का काल लेना है, यानी सूक्ष्म का मैक्सिमम काल ले सकते हैं हम। नहीं नहीं, बादर अपर्याप्तों में जघन्य स्थिति बंद हो सकता है, ये हमने बहुत पहले सीखा था। अरविंद ऐसा करते हैं, सम्य ज्ञान चंद्रिका में सीखा था। वो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन जब हम कहते हैं एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल है, सूक्ष्म बादर पर्याप्त पर्याप्त मिल के काल है, अकेले सूक्ष्म में रहने का उत्कृष्ट काल है वो असंख्यात लोक है। और बादर पर्याप्तों में भी हम देखते हैं, बादर पर्याप्तों में तो संख्यात हजार वर्ष ही है, और बादर पर्याप्त अपर्याप्त मिलकर फिर वो अंगुल का असंख्यात भाग होता है, इसलिए यहां मुख्यतः सूक्ष्मों की ही लेनी है। देखो देखो कहां तक आए हम, तिर्यंश पर्याय में मोनी की अजगन्य स्थिति के साथ रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, अतः इनके अजगन्य स्थिति का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण का, क्योंकि हमने वो तिर्यंशों के योग्य जगन्य कहाँ होगा, तो जगन्य मिनिमम पॉसिबल स्थिति बंध तो बादर अपर्याप्त जीव करेंगे उनके। हाँ, अग्नि का एक वायु का एक। यह जो ऊपर सामान्य तिर्यंशों के जगन्य और अजगन्य स्थिति का काल कहा, वह एकेंद्रियों की प्रधानता से कहा है करना। और एकेंद्रिय पर्याय के रहते हुए मत्य ज्ञान, श्रुता ज्ञान, असंयम, अभव्य, मिथ्या दृष्टि और असंगी, ये मार्गणाएं संभव है ही, अतः इनका कथन तिर्यंचों के समान जानना। किंतु ऊपर अजगन्य स्थिति का जगन्य काल जो एक समय कहा है, वह असंगी अवस्था में ही प्राप्त होता है, शेष मार्गणाओं में नहीं, क्योंकि जो जीव जघन्य स्थिति के बाद एक समय तक अजघन्य स्थिति को प्राप्त हुआ और तदनंतर मरकर अन्य गति को प्राप्त हो जाता है, इसके असंगी मार्गणा तो बदल जाती है पर ऊपर कही हुई मार्गणाएं नहीं बदलती। इसका अर्थ अब कहेंगे, देखेंगे क्या कहना चाहते हैं। एक समय कैसा घटित किया था, एकेंद्रियों में जघन्य हुआ था, उसके बाद एक समय के लिए अजघन्य हुआ और मरकर अन्य गति को प्राप्त हुआ। नरक गति में तो होता ही नहीं है, मनुष्य में आया, असंगी की बात नहीं, हम तिर्यंच गति की बात करें। एकेंद्रियों के बाद वो कहाँ आया, मनुष्य में आया, बराबर है। अब कहते हैं यानी तिर्यंचों में तो घटित किया, असंगी में घटित करना है तो ऐसा ही, क्योंकि एकेंद्रिय भी असंगी है, एकेंद्रिय में उसने जगन्य वो कर दिया और वहां से वो मनुष्य में आ गया तो वो पंचेंद्रिय हुआ, असंगी में से संगी हुआ, तो एक समय असंगी में भी घटित हो जाता है, बराबर। अब हम यहाँ की मार्गणाएं देखते, मत्य ज्ञानी, मार्गणा कौन सी है, मत्य अज्ञानी, कुमति ज्ञानी, एकेंद्रियों में जघन्य किया, एक समय के लिए अजगन्य हुआ, मरकर मनुष्य में आया, तो भी कौन था वो, मत्य ज्ञानी ही रहा। पहले हमने तिर्यंच गति से अन्य गति को प्राप्त हुआ, अब यहाँ मत्य ज्ञानी से अन्य क्या होगा, वो मत्य ज्ञानी ही रहेगा, इसलिए वहां एक समय घटित नहीं होगा। ख्याल आया क्या कहना चाहिए, वहां तो एक लास्ट समय में अजगन्य किया और मरकर मनुष्य में उत्पन्न हुआ, तो तिर्यंच गति तो उसकी समाप्त हुई, तो एक समय के लिए तिर्यंच गति में अजगन्य रहा, जब अपनी मार्गणा मत्य ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि ही रहा, तो उसके और समय गिनेंगे जब तक वो समय दृष्टि नहीं होता है, तो मार्गणा तो मिथ्या ज्ञानी की रही। इसलिए कहते हैं ये मत्य ज्ञानी में भी समा संभव नहीं है, एक समय श्रुता ज्ञानी में भी संभव नहीं है। और कौन कौन से देखे, असंयम, वो असंयम का असंयम ही मार्गणा चालू रही तो एक समय उसका, क्योंकि मार्गणा यदि बदलती तो एक समय घटित होता। अभव्य में तो कोई सवाल ही नहीं है, अभव्य तो अभव्य ही रहेगा, मिथ्या दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि। असंगी में तो हो संभव है, क्योंकि असंगी में से संगी हुआ, बोले मिथ्या तो कायम रहेगा ही उसका, अपनी मार्गणा क्या है असंगी की, इसलिए असंगी में एक समय संभव है। जो अन्य मार्गणाएं नहीं बदलती वहां वो एक समय घटित नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं मत्य ज्ञानी आदि उपर्युक्त शेष मार्गणाओं में अजघन्य स्थिति का जघन्य काल अंतर्मूर्त जानना चाहिए। कैसे हुआ, उसने जघन्य किया था, उसके बाद वो अजघन्य हुआ, मरकर मनुष्य में आया, या मरकर संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच हुआ, और फिर अंतर्मूर्त काल में उसने मनुष्य में नहीं घटाना, वो तिर्यंच में घटाओ, अंतर्मूर्त काल के द्वारा उसने सम्यक तो प्राप्त किया, वो ले सकते हैं, क्योंकि उसकी मत्य ज्ञानी मार्गणा ही बदल गई, इसलिए घटित करते हैं। या इसे कह सकते हम अजगन्य किया था तो अजगन्य अजगन्य लगातार अंतर्मूर्त बंद हुआ, फिर जाके जघन्य बंद किया, तब ये घटित होगा, क्योंकि अंतर्मूर्त में उत्पन्न हुआ समय तो हुआ, उसके बदले ये ज्यादा घटित हो सकता है। आगे अभी तो सामान्य से तिर्यंचों में उन्होंने बताया था, अब पंचेंद्रिय पर्याप्त, योनिमति और लब्धिया पर्याप्त, इन चार प्रकार के तिर्यंचों में, तिर्यंचों की बात है परंतु अभी उसके अन्य भेद ले रहे, पहले तो सामान्य से सभी तिर्यंच लिए तो वहां एकेंद्रिय के योग्य जो घटित होता था वो घटित हुआ, अब यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच, योनिमति तिर्यंच और लब्धिया पर्याप्त तिर्यंच, इनकी बात है। इनमें मोहनी की जघन्य स्थिति का जघन्य सत्व काल एक समय है और उत्कृष्ट सत्व काल दो समय है, यानी लगातार जघन्य रहने का उसको उत्कृष्ट सत्व काल कहेंगे, लगातार दो समय तक वो एकेंद्रिय जीव इनमें उत्पन्न हुए हैं ऐसा लेना। जैसे हमने नरक में असंगी को उत्पन्न किया था वैसे एकेंद्रियों में जिसने जघन्य स्थिति की है और मरकर मोड़ा वाले गति में आ गए हैं, हाँ, और बंद वैसा ही किया उसने, उसको लेना। एक समय कैसे, तो जैसे सेकंड समय में हमने एक समय घटित करते हैं और दो समय उतना का उतना बंधक किया तो दो समय होगा, पढ़ना है, देखो विशेषार्थ निकालो। चालीस पृष्ठ पर, जो एकेंद्रिय दो मोड़ा लेकर पंचेंद्रिय तिर्यंच चतुष्क में उत्पन्न होते, ये चतुष्क कौन है, पंचेंद्रिय तिर्यंच चतुष्क, हाँ, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, योनिमति तिर्यंच और लब्धिय पर्याप्त तिर्यंच, तो कहते दो मोड़ा लेकर पंचेंद्रिय तिर्यंच चतुष्क में उत्पन्न होते हैं, उनके पहले और दूसरे समय में मोहनी की जघन्य स्थिति संभव है, दोनों समयों में संभव है, अतः इनके मोहनी की जघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा। नाना जीवों के ये सभी जो हमारी मार्गणा है, सॉरी अनुयोग चल रहा है, वो एक जीव की अपेक्षा काल चल रहा है, एक जीव की अपेक्षा ही चल रहा है, उसने उतना ही बंद किया है जगन्य, जितनी स्थिति है उतना ही बंद किया है। इसीलिए जितनी सत्ता में स्थिति है उतना ही बंद किया। एक निशे गल गया फिर भी बंद तो उतना ही किया, तो स्थिति उतनी ही रही। देखो 100 समय के साथ वो आया है और 100 समय ही उसने स्थिति बांधी है, वो नहीं ली। 100 समय के साथ आया है, 100 समय जघन्य स्थिति है और उसने बंद भी 100 समय का किया है। निषेक गल गया परंतु बंद कितना किया था, 100 का ही किया था। और निषेक जो पूर्व में बंधा हुआ वो ही गल गया है। अभी जो नया 100 समय वाला बंधा है वो तो सत्ता में है ना, उसकी तो आबादा सहित 100 समय ही गिनते हम। बंधा हुआ कहाँ गला है, बंधे हुए के तो 100 समय, हाँ सेम बंद करेगा उसको लिया यहाँ, क्योंकि विग्रह गति में एक इंद्रिय के योग्य बंद कर रहा है, इसलिए लगातार 2 समय लिए उसके। देखो जो एक इंद्रिय 2 मोड़ा लेकर पंचेंद्रिय तीरियंच चतुष्क में उत्पन्न होते हैं, उनके पहले और दूसरे समय में मोहिनी की जघन्य स्थिति संभव है, क्योंकि बंध अभी पहले योग्य हो रहा है, अभी पंचेंद्रिय जैसा बंध नहीं हो रहा। और यहाँ 2 से 3 मोड़ नहीं ले सकता है, वो तो सूक्ष्म एक इंद्रिय में ही घटित होता है, तो 2 मोड़ में तो पंचेंद्रिय में पहुंच ही जाएगा। अतः इनके मोहिनी की जघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय, क्योंकि एक मोड़े से भी जा सकता है या एक इंद्रिय के योग्य अधिक भी बंद कर सकता है, इसलिए एक समय घटित होगा। और उत्कृष्ट काल 2 समय, तथा इन 2 समयों को खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण अंतर्मूर्त काल में घटा देने पर जो 2 समय कम खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण काल शेष रहता है वह पंचेंद्रिय तीर्यंच और पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्त तीर्यंचों की अजघन्य स्थिति का जघन्य काल, वो हम अभी पढ़ेंगे। जघन्य कितना घटित होता है, एक समय या 2 समय। जब ऊपर जो लब्धि अपर्याप्त लिखा है ना, वो पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त समझना, तीर्यंचों में सारे पंचेंद्रियों की ही बात है। देखो 2 लाइन हो गई अपनी, जघन्य का एक समय और 2 का 10 समय उत्कृष्ट काल घटित किया। अब तीसरी लाइन, तथा अजघन्य स्थिति का जघन्य सत्व काल पंचेंद्रिय तीर्यंच, वो तीर्यंच करना, और लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रिय तीर्यंचों में। अब ये जघन्य सत्व काल छोड़ेंगे तो अजघन्य घटित होगा। ऐसे कोई जीव होगे कि पूरी लाइफ टाइम तक अजघन्य ही रहा, परंतु कम से कम लेना है तो क्या करना, मिनिमम आयु में से ये 2 समय कम कर दो। तो पंचेंद्रिय तीर्यंचों में मिनिमम आयु किसकी है, लब्धि अपर्याप्त होंगे, और जो लब्धि अपर्याप्त की क्राइटेरिया है उसके भी खुद्दा भव ग्रहण कहेंगे। इसलिए पर्याप्त तीर्यंचों को नहीं लिया, योनिमति को नहीं लिया, पंचेंद्रिय तीर्यंच जो सामान्य है उनको लिया, क्योंकि सामान्य में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते हैं, और उनमें दोनों में मिनिमम आयु वाला तो खुद्दा भव ग्रहण वाला होता है, और उसमें वो जघन्य वाले 2 समय कम कर दिए हमने। तो कहते हैं इनमें 2 समय कम, नीचे से दूसरी लाइन, 2 समय कम खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण है, किसकी बात चल रही है, अजघन्य स्थिति का जघन्य सत्व काल। और शेष 2 प्रकार के तीर्यंचों में, 2 कौन से रह गए, पंचेंद्रिय पर्याप्त और योनिमति, उनमें कितना होगा, 2 समय कम अंतर्मूर्त, क्योंकि उनकी मिनिमम आयु अंतर्मूर्त की होती है, पर्याप्तों की जघन्य आयु अंतर्मूर्त की पाई जाती है। योनिमति भी पर्याप्त जीव होते हैं, पर्याप्त जीवों में ही वो स्त्री पुरुष वेद वगैरह होते हैं, एक तो पर्याप्त उन्होंने बता ही दिया और योनिमति भी पर्याप्त होते हैं, इसलिए उनमें अंतर्मूर्त मिनिमम आयु उसमें से 2 समय कम कर दिए। ये बात ख्याल में आई जय बेन, लक्ष्मी बेन, हाँ इसमें ज्यादा लब्धि अपर्याप्त को भी रेंज है, मिनिमम से लेकर जो कुछ है वो आयु होगी तो वो योनिमति में तो जघन्य आयु तो अंतर्मूर्त है। हाँ हो सकती है ना, कितनी हो सकती है? योनिमति तिर्यंच पूर्व कोटि, आप क्या कहते हैं? 55 कोटि तो देवों की होगी, देवियों की। तिर्यंच योनिमति की उत्कृष्ट आयु, हाँ तीन पल्य भोग भूमि में। मंदावेन यहाँ मूलोच्चारणा का पाठ है, ये उच्चारणाचार्य ने जो लिखे है ना उसको मूलोच्चारणा कहा। उसमें पाठ है कि उक्त चारों प्रकार के तिर्यंचों के अजघन्य स्थिति का जघन्य सत्व काल एक समय। अभी हम कितना घटित कर रहे हैं? जघन्य आयु में दो समय कम, दोनों ओर हमने घटित किया। अपर्याप्तों में भी दो समय कम, खुद्दा भव ग्रहण लिया, और पर्याप्तों में दो समय कम, अंतर्मूर्त लिया। अब दूसरा पाठ कौन सा अवेलेबल है? इन चारों में अजघन्य स्थिति का जघन्य सत्व काल एक समय भी घटित होता है। वो कैसे? इसका यह अभिप्राय है कि जो संगी एकेंद्रियों में उत्पन्न हुआ और उसने संगी की स्थिति का घात किया, अनंतर वह मरकर एक समय अधिक असंगी के योग्य स्थिति के साथ उक्त चार प्रकार के तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ, तो उसके पहले विग्रह में अजघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय पाया जाता है। क्या कहते हैं? हमने पहले जैसे नरक में घटित किया था, विग्रह गति के पहले समय में अजघन्य एक समय के लिए हुआ था, वैसे यहाँ उन्होंने घटित किया है। एक केंद्रीय उत्पन्न हुआ और उसके बाद संगी की स्थिति तो घाती उसने, हाँ यानी संगी के लिए वो अजघन्य हो गई, उस अजघन्य के साथ वो संगी में उत्पन्न हुआ है, इन चारों में उत्पन्न हुआ। हाँ क्योंकि ये चारों ही पंचेंद्रिय है ना। तो विग्रह के पहले समय में अजघन्य का जघन्य काल एक समय पा जाए, तथा उक्त चारों प्रकार के तिर्यंचों के अजघन्य स्थिति का उत्कृष्ट सत्व काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। यानी अजघन्य में ही रहा वो, जघन्य किया नहीं उसने, तो अपनी अपनी स्थिति प्रमाण। पंचेंद्रिय तिर्यंचों की अपनी स्थिति कितनी है याद है? हाँ, एक पल्य, तीन पल्य, 95 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्य। एक ही जीव, नाना जीवों की अपेक्षा तो सदाकाल कहेंगे हम। योनिमति में संगी असंगी दोनों लेने ना। देखो देखो, हमने वहां एक भव की अपेक्षा बात पूछी थी, अब यहाँ उनकी स्थिति प्रमाण बात चल रही है। हमने एक योनिमति का एक भव कितना बड़ा हो सकता है ऐसा पूछा था, तब मैंने अलग प्रश्न पूछा था। अभी मैं जो अजघन्य स्थिति के साथ लगातार पंचेंद्रियों में रहने का काल कौन सा है, उनकी काय स्थिति लेना, यहाँ भव स्थिति नहीं। तो पंचेंद्रिय तिर्यंचों में 95 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्य, पंचेंद्रिय पर्याप्तों में बीच में अपर्याप्त नहीं लेना है, संगी के और असंगी के, हाँ 47 यानी 47 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्य, योनिमति में हाँ 15 पूर्व कोटि और तीन पल्य, और लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रियों में लगातार रहे तो अंतर्मूर्त। मनुष्यनी में एक भव तो तीन पल्ले वाला होगा, परंतु मनुष्यनी लगातार रहने का जो काल है वो तो 7 कोटि पूर्व और लास्ट वाला तीन पल्ले, वो मनुष्य निमय रहने का उत्कृष्ट काल। यहाँ लिखा ना अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। अब विशेषार्थ पढ़ेंगे, ये शुरू से पढ़ते जो हमने तो पढ़ लिया अभी थोड़ा। जो एकेंद्रिय दो मोड़ा लेकर पंचेंद्रिय चतुष्क में उत्पन्न होते हैं, उनके पहले और दूसरे समय में मुनि की जघन्य स्थिति संभव है। हर एक को होती वो बात नहीं, संभव है। अतः इनके मुनि की जघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा, तथा इन दो समयों को खुद्दाभव ग्रहण प्रमाण अंतर्मूर्त काल में घटा देने पर, जो दो समय कम खुद्दाभव ग्रहण प्रमाण काल शेष रहता है, वह पंचेंद्रिय तिर्यंच और पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक तिर्यंचों की अजघन्य स्थिति का जघन्य काल होता है। क्योंकि इन दो में ही वो खुद्दाभव ग्रहण होता है, पर्याप्तों में भी नहीं होता और योनिमति में भी नहीं होता। इसलिए यहां कितना लेना, दो समय कम खुद्दाभव ग्रहण, तथा जो दो समय कम अंतर्मूर्त काल शेष रहता है, वह पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति जीवों की अजघन्य स्थिति का जघन्य काल होता है। क्योंकि उनका जघन्य आयु उतनी होती है अंतर्मूर्त वाले। इन चार प्रकार के तिर्यंचों के अजघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय होता है, ऐसा मूलोच्चारणा में पाठ पाया जाता है। ये एक समय कैसे घटित करना वो अभी बता रहे हैं। उसका यह तात्पर्य है, पहले कोई एक संगी जीव एकेंद्रियों में उत्पन्न हुआ, अनंतर उस एकेंद्रिय ने संगी की स्थिति का घात किया। ये अलग जीव नहीं, वही जीव है। पहले संगी था तो ज्यादा बंद किया था, असंगी में जाने के बाद स्थिति कांडक घात हुए तो कहते स्थिति का घात किया। और ऐसा करते हुए जब उसके असंगी की जघन्य स्थिति से एक समय अधिक स्थिति शेष रही गई, क्या कहते हैं, यदि वो पूरा जघन्य कर देता स्थिति, तो जघन्य स्थिति के साथ उत्पन्न हुआ कहेंगे हम। अब उसने कितनी स्थिति की, जघन्य से एक समय ज्यादा, क्योंकि सभी जो जघन्य ही करेंगे वहां तक जाएंगे ये बात नहीं है। उसने अजघन्य स्थिति की, उस अजघन्य के साथ वो यहां उत्पन्न हुआ। तो असंगी की जघन्य स्थिति से एक समय अधिक स्थिति शेष रह गई, तब वह मरकर उक्त चार प्रकार के तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ। वे चारों ही पंचेंद्रिय तिर्यंच हैं, एक है सामान्य, एक है पर्याप्त, एक है योनिमति और एक है लब्धि अपर्याप्त, है सभी पंचेंद्रिय। पहले एकेंद्रिय में गया था, स्थिति घात करते करते जघन्य से एक समय ज्यादा रख हुआ, उसका अजघन्य रह गया, जघन्य नहीं हुआ, और उस अजघन्य के साथ अभी इन चार प्रकार के तिर्यंचों में जन्मा। इस प्रकार इन चार प्रकार के तिर्यंचों के पहले मोड़े के समय अजघन्य स्थिति प्राप्त हो गई, और इस प्रकार इस करो उसको ई रह गया, इस प्रकार अजघन्य स्थिति का भी एक समय काल बन जाता है। बात यह है कि एकेंद्रियों से लेकर असंगी तक जो जीव मरकर संगियों में उत्पन्न होते हैं, उनके अनाहारक अवस्था में असंगी के योग्य स्थिति का ही बंध होता है। अनाहारक है ना, वो मोड़ वाला, विग्रह वाला, कारमान का योग वाला। हाँ, ऐसे जीवों के शरीर ग्रहण करने के समय से लेकर संगियों के योग्य स्थिति का बंध होने लगता है। इसलिए पहला मोड़ा दूसरा मोड़ा इसी बात की थी। अतः ऐसे संगी जीवों के पहले और दूसरे मोड़े में असंगियों की जघन्य स्थिति भी पाई जाती है, और यही इनकी जघन्य स्थिति हो जाती है। अब यदि कोई जीव एक समय अधिक असंगियों की जघन्य स्थिति के साथ संगियों में उत्पन्न हुआ, तो उसके पहले मोड़े में अजघन्य स्थिति ही कही जाएगी। यही सबब है कि मूलोच्चारणा में उक्त चार प्रकार के तिर्यंचों के अजघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय भी माना है। तथा उक्त चार प्रकार के तीर्यंचों में जिसके जितनी काय स्थिति हो, अभी हमने गिनाई ना किसकी कितनी है, उतनी उनके अजगण्य स्थिति का उत्कृष्ट काल जानना चाहिए। लगातार वो सामान्य पंचेंद्रिय तीर्यंच रहा तो कितने काल तक रहेगा, तो उसको उसके अभी हमने घटाया ना कितने रहता है, तो उसको अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल कहेंगे। किसके कितनी काय स्थिति है यह अन्यत्र से जान लेना चाहिए। हमने पहले जाना था इसको, ये 27 पेज पर था, वहां भव स्थिति और काय स्थिति समझाई थी उन्होंने विशेषार्थ में। देखो विशेषार्थ में नीचे से पांचवी लाइन, उक्त तीन प्रकार के तीर्यंचों की काय स्थिति मिला क्रम से 95 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्य, मिला कि नहीं मिला, 27 पेज, 47 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्य जो अभी हमने गिनाया था, 15 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्य, ये तो तीर्यंचों की होंगे और अपर्याप्तों के तो अंतर्मूर्त होता ही है। अब आगे बढ़ते हैं 40 पृष्ठ पर नीचे, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी, इन तीन प्रकार के मनुष्यों में मोहिनी की जघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट सत्व काल एक समय है, लगातार रहने का भी एक समय है। प्रेरणा बिन कहाँ होगा ये, सामान्य मनुष्यों में जघन्य स्थिति शपक सूक्ष्म सांप्राय, वो तो एक समय के लिए होगी अंतिम समय में, तथा अजघन्य स्थिति का जघन्य सत्व काल सामान्य मनुष्यों के खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण, जघन्य नहीं है वो अजघन्य है, जब तक सूक्ष्म साम्राज्य का अंतिम समय नहीं आता तब तक वो अजघन्य ही कहलाएगा, तो सामान्य मनुष्यों के लिए कितना कहेंगे, खुद्दा भव ग्रहण। शेष दो के अंतर्मूर्त है, पर्याप्त मनुष्यों के लिए जघन्य उनकी आयु है अंतर्मूर्त, और मनुष्यनी की भी जघन्य आयु है अंतर्मूर्त, इसलिए अंतर्मूर्त कहा। और उत्कृष्ट सत्वकाल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है, ये अपनी अपनी स्थिति है ने सामान्य मनुष्यों की अपनी स्थिति, पर्याप्त मनुष्यों की अपनी स्थिति और मनुष्यनी की अपनी, अभी हमने 27 पेज पर देखा था, निकालो। हाँ हाँ, 47 पूर्व कोटि देखी थी ना हमने, 47 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्य, 23 पूर्व कोटि और तीन पल्य, हाँ, और एक 7 पूर्व कोटि और तीन पल्य मनुष्यनी में। लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों के जघन्य और अजघन्य स्थिति का काल पंचेन्द्रिय तीर्यंच लब्धि अपर्याप्तकों के समान जानना। लब्धि अपर्याप्तकों के योग्य जघन्य स्थिति कब होगी, अब जो एकेंद्रियों में से वहां आया है, जघन्य स्थिति कब होगी, एकेंद्रियों में से मरकर आया है और मोड़ा में है उसके होगी, जैसे अभी अभी हमने पंचेन्द्रिय तीर्यंच लब्धि अपर्याप्त में देखा था। विशेषार्थ, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी, इन तीन प्रकार के मनुष्यों के मोहिनी की जघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल जो एक समय बतलाया है, सो इसका खुलासा जिस प्रकार ओघ प्ररूपणा के समय कर आए हैं उस प्रकार कर लेना चाहिए, यानी वही क्षपक की बात है। तथा सामान्य मनुष्य का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण, किसका, अजघन्य की बात चल रही है, और शेष दो प्रकार के मनुष्यों का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, अतः इनके अजघन्य स्थिति का जघन्य काल उक्त प्रमाण कहा। तथा ये समझ में आ रहा है, हाँ, सामान्य मनुष्य में वो भी होता है इसलिए खुद्दा भव ग्रहण लिया, कौन सा, या कम क्यों नहीं किया, जब जघन्य होने के बाद अजघन्य होता है तब कम करते हैं, जघन्य तो होता ही क्षपक में होता है, सामान्य वे खुद्दा भव ग्रहण, वो तो सामान्य मनुष्य एकेंद्रियों में से आया हुआ वो नहीं लेना, क्योंकि एकेंद्रियों की जितनी स्थिति है कितनी है, अभी जो मिनिमम पॉसिबल सागर में से जो कुछ कम किया था पल्ले का असंख्यात भाग, और उसकी दसवें के अंत में तो एक समय वाली है। तो सामान्य मनुष्य कहो, पर्याप्त कहो, मनुष्यनी कहो, जघन्य में जघन्य कितनी होती है? एक समय। परंतु लब्धिया पर्याप्त तक जब मार्गणा कह दी तो उसमें जघन्य कितनी हो सकती है? तो वो एकेंद्रियों में से जो यहाँ जन्म लिया है उसकी होती है, वो मार्गणा की जघन्य है। परंतु जब सामान्य मनुष्य कहेंगे तो जिस किसी मनुष्य में जघन्य है उसको लेना है। तो सामान्य मनुष्यों में वो क्षपक भी आ गए, इसलिए वहां तो एक समय वाली एक स्थिति ही लेना है। तो सामान्य मनुष्यों में अजघन्य की कौन होगी? वो एक समय वाली छोड़कर अजघन्य होगी, तो वो मिनिमम किसके होगी? तो अपर्याप्तों की होगी, क्योंकि सामान्य कहने पर अपर्याप्त भी उसमें आ गए। और जब पर्याप्त मनुष्य अपना क्राइटेरिया है तो अंतर्मूर्त उनकी जघन्य आयु होती है, मनुष्य नहीं कहेंगे तो अंतर्मूर्त जघन्य आयु होती है, इसलिए उसमें तो अंतर्मूर्त पूरा लेना। जब हमने अन्यत्र घटित किया था, जैसे नारकियों में वो दो समय कम जघन्य आयु किए थी, वो यहां बात नहीं लेनी है, क्योंकि यहां जघन्य एक समय वाला क्षपक में घटित हो रहा है, इसलिए यहां जो जघन्य आयु है वहां अजघन्य के साथ वो वहां आया है और जघन्य आयु वहां बिताई, तो उसकी उतनी लेनी। कहां? पहले नरक असंगी में से, एक इंद्रिय में से, असंगी में से पहले नरक के लिए। हाँ, और अन्य नरकों में लास्ट समय में जघन्य, तो पहले पूरे सारे उसके अजघन्य, इसलिए वो पहले नरक में हमने दो समय कम जघन्य आयु देखा। यहां इसलिए कहते हैं, देखो तीसरी लाइन विशेषार्थ की, तथा सामान्य मनुष्य का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण, क्योंकि सामान्य में जघन्य आयु उसी की होती है। तथा शेष दो प्रकार के मनुष्यों का, यानी पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी, ये पर्याप्त जी होते दोनों ही, उनका जघन्य काल अंतर्मूर्त है, अतः इनके अजघन्य स्थिति का जघन्य काल उक्त प्रमाण है। तथा अजघन्य स्थिति का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट काय स्थिति प्रमाण होता है, यानी लगातार उस पर्याय में रहने का काल, यह स्पष्ट ही है। इस विषय में लब्धि अपर्याप्त मनुष्य की स्थिति लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच के समान है, अतः इसके जघन्य और अजघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच के समान कहा। हमने देखा था ना, दो एकेंद्रिय उसमें उत्पन्न होता है, उस अपेक्षा से वहां ले लेना। अब देवो किसका खुदा भवग्रहण, हाँ काल समान उसकी जो एक ही काल, लब्धि अपर्याप्तकों में उनका जो जीवन काल है उसके वेरिएशन है, क्योंकि उसमें भी एक एक समय से बढ़ते हुए अनेक भेद होते हैं, वो हर एक में हो गए। एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त हो, द्विंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, उनमें जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अनेक भेद हो गए, वो सबको हम लब्धि अपर्याप्त कहेंगे। तो यहाँ खुद्दा बहुग्रहण क्यों कहा? उनमें जो मिनिमम पॉसिबल है उसको खुद्दा बहुग्रहण कहते हैं। आपको याद होगा उसमें भी जीवनीय और बंधनीय ऐसे दो स्थान होते हैं, क्योंकि लब्धि अपर्याप्तकों में भी कदलीघात हो सकता है, बांधा था उससे कम हो गया, तो बंध में जो मिनिमम पॉसिबल है उसका तो कदलीघात नहीं होता, पर कुछ मान लेते मिनिमम से थोड़ा ज्यादा बांधा है और उसका कदलीघात हुआ और जितना मिनिमम बंध हो सकता है उससे भी कम हो गई आयु, तो उसको जीवन की अपेक्षा मिनिमम कहा, तो उसको खुद्दा भोग्रहण करेंगे। तो जो कोई मिनिमम पॉसिबल आयु है वहां पर सेम होगा, खुद्दा भोग्रहण का काल एकेंद्रिय पर्याप्त हो या पंचेंद्रिय पर्याप्त हो उनके समान होगा। अब देवों की बात कर रहे हैं। देवों में मोहनीय की जघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट सत्व काल एक समय है। तथा अजघन्य स्थिति का जघन्य सत्व काल एक समय और उत्कृष्ट सत्व काल अपनी स्थिति प्रमाण है। उन्हें नारकियों में भी घटित किया था ना। भवनवासी और व्यंतर देवों में मोहनीय की जघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट सत्व काल एक समय है। भवनवासी व्यंतर दो ही लिए क्योंकि असंगी इन्हीं में उत्पन्न होते हैं। जैसे पहले नरक में घटित कर आए हैं वैसे भी यहाँ पर भी घटित करना। तथा अजघन्य स्थिति का जघन्य सत्व काल एक समय और उत्कृष्ट सत्व काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। अजघन्य का जघन्य सत्व काल एक समय भवनवासी और व्यंतर में असंगी में से इसमें आए हुए जीव दूसरे विग्रह में जघन्य हो जाता है। पहले में अजघन्य इसलिए अजघन्य एक समय होता है। ज्योतिषियों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों के जघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट सत्व काल एक समय है। ये कब होगा? अंतिम समय में, क्योंकि वहां निषेक गलते चले जाते हैं उस अपेक्षा से। तथा अजघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट सत्व काल क्रम से अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होता है। यानी ये तो अजघन्य का एक समय भवनवासी व्यंतर में असंगी में से उत्पन्न हुए जीव के होता है। अन्यत्र ज्योतिषी लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक वहां की जो जघन्य आयु है, अभी सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य उत्कृष्ट एक ही होती है, तो वहां की जो जघन्य आयु है उतनी अजघन्य स्थिति का जघन्य काल और उत्कृष्ट अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। विशेषार्थ, जिस प्रकार सामान्य नारकियों के मोहनीय की जघन्य और अजघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल घटित करके लिख आए हैं, उसी प्रकार सामान्य देवों के घटित कर लेना चाहिए। तथा भवनवासी और व्यंतर देवों के भी इसी प्रकार जानना। विशेष बात इतनी है, इनके अजघन्य स्थिति का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होता है। क्योंकि इतने काल तक उनके मोह की अजघन्य स्थिति पाई जा सकती है। ज्योतिषियों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों के मोहनीय की जघन्य स्थिति भव के अंतिम समय में ही संभव है। तो वो कितने काल तक होगी? एक समय तक। अतः इनके जघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। पर यह जघन्य स्थिति उत्कृष्ट आयु वाले के होती है और वह भी सबके नहीं होती। उत्कृष्ट आयु है इसलिए सबके होगी ऐसी बात नहीं है। अभी किसको कब सम्यक तो हुआ है, कब नहीं हुआ है, कितने सत्ता के साथ वहां आया है, इस बात पर निर्भर है। अतः अजघन्य स्थिति का जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण, यानी उस स्वर्ग की जितनी आयु है जघन्य उतनी होगी, और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। यानी कोई ऐसा भी जीव है कि आयु के अंत में उसने जघन्य स्थिति नहीं की तो उसके पूरे आयु तक अजघन्य ही रहा। ये तो गति मार्गणा हुई। अब इंद्रिय मार्गणा की बात करेंगे। एकेंद्रिय जीवों में मोहनीय की जघन्य स्थिति का सत्वकाल कितना है? जघन्य सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट सत्वकाल अंतर्मूर्त, हमने देखा था ना। वो जघन्य उसने सत्ता की और फिर उसने अंतर्मूर्त तक उतना ही जघन्य बंद किया, तो अंतर्मूर्त काल तक पाई जाएगी। अभी एक इंद्रिय जनरल बात है, और जिसमें होगी अभी बादर में होगी तो बादर में लेना उसकी, फिर भी है तो अंतर्मूर्त वाला है। हाँ। तथा उन्होंने उसके भेद यहां नहीं बताए। ये तो हमने पूर्व में जो पढ़ा था उसकी अपेक्षा ली थी। अजघन्य स्थिति का सत्वकाल कितना है? जघन्य सत्व काल एक समय, हमने देखा ना एक समय के लिए अजघन्य हुआ और फिर जघन्य स्थिति बांधी, यानी एक समय अधिक था फिर वो गल गया। तो जघन्य सत्व काल एक समय और उत्कृष्ट सत्व काल असंख्यात लोक प्रमाण है। एक इंद्रियों की स्थिति है असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, परंतु यहाँ जघन्य सत्व काल कितना लिया और जघन्य स्थिति का उत्कृष्ट सत्व काल, जघन्य ने अजघन्य स्थिति का उत्कृष्ट सत्व काल असंख्यात लोक प्रमाण लिया। इसी प्रकार सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों के जानना चाहिए, सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों में तो भी वही असंख्यात लोक प्रमाण घटित होता ही है। बादर एकेंद्रीय और बादर एकेंद्रीय पर्याप्त जीवों में मुनि की जघन्य स्थिति का जघन्य सत्व काल कितना है, जघन्य सत्व काल एक समय और उत्कृष्ट सत्व काल अंतर्मूर्त है। तथा अजघन्य स्थिति का सत्व काल कितना है, अजघन्य की बात पूछे, जघन्य सत्व काल एक समय और उत्कृष्ट सत्व काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। किसकी बात चल रही है, बादर एकेंद्रीय और बादर एकेंद्रीय पर्याप्त। बादर एकेंद्रियों में अंगुल का संख्या तबा और बादर एकेंद्रीय पर्याप्तों में संख्या 1000 वर्ष। बादर एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक, सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तक और सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक जीवों में मुनि की जघन्य और अजघन्य स्थिति का जघन्य सत्वकाल एक समय है तथा उत्कृष्ट सत्वकाल अंतर्मूर्त है। ये बादर एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक लगातार होते रहे तो भी अंतर्मूर्त, और सूक्ष्मों में पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो लगातार रहने का काल अंतर्मूर्त, और सूक्ष्मों में दोनों मिलकर रहेंगे तो असंख्यात लोक, जो अभी हमने ऊपर देखा था। इसी प्रकार विकलेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक, पांचों स्थावर काय बादर लब्धि अपर्याप्तक, पांचों स्थावर काय सूक्ष्म पर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक तथा औदारिक मिश्र कायोगी जीवों के कहना चाहिए, इन सभी के अंतर्मूर्त ही होता है। विशेषार्थ सामान्य केंद्रीय और उनके जितने भेद प्रभेद है उनमें मोहनीय की जघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल तथा अजघन्य स्थिति का जघन्य काल सामान्य तिर्यंचों के समान घटित कर लेना चाहिए, किंतु अजघन्य स्थिति का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण जानना चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी काय स्थिति बतलाई है उसके उतने काल तक मोहनीय की अजघन्य स्थिति पाई जाती है, किंतु एकेंद्रीय जीवों के अजघन्य स्थिति का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण ही होता है, यानी वहां असंख्यात पुद्गल प्रमाण नहीं लिया, पुद्गल परिवर्तन असंख्यात लोक ही लिया। तथा विकलत्र अपर्याप्त, पांचों स्थावर काय बादर अपर्याप्त, पांचों स्थावर काय सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त तथा औदारिक मिश्र काय योगी जीवों के भी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए, किंतु इनके अजघन्य स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होता है, क्योंकि ये मार्गणा अंतर्मूर्त वाली है, उत्कृष्ट काल भी क्योंकि इनका उत्कृष्ट काल इससे अधिक नहीं है। ये बात ख्याल में आई, यहीं रुकते हैं अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नो सना देत हो। प्रेरणा भी